नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, हमें जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको बहुत ही लाभ मिल रहा है। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि आप इस कार्यक्रम से अधिक आत्मिक लाभ प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ते चले जाएं। तो आज हम जिस पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे वो है दानिय्येल नबी की पुस्तक, जिसका विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन, और इसके लेखक भी स्वयं दानिय्येल नबी हैं। पुराने नियम के नबियों की पुस्तकों में ये एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। धर्म विज्ञान की दृष्टि से इस पुस्तक का विषय परमेश्वर की सार्वभौमिकता है। दानिय्येल के दर्शन स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि परमेश्वर ही विजेता है। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले आज हम इसकी पृष्ठभूमि और रूपरेखा पर विचार करेंगे। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पिछले अध्ययन में फिलिमोन नामक पुस्तक से अर्थात पत्री से अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पौलुस के द्वारा उनेसिमुस और फिलिमोन के बीच एक दास और स्वामी के संबंध को एक भाई के रूप में होते हुए देखा। आज हम अपने अध्ययन को एक नई पुस्तक से आरंभ करने जा रहे हैं, जो पुराने नियम में से दानिय्येल नबी की पुस्तक है। मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और तत्पश्चात हम इसके परिचय और अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके वचन का अध्ययन फिर से एक बार कर सकें। आज जब हम दानिय्येल नबी की पुस्तक से अध्ययन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते और सीखते हैं निश्चित रूप से हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आत्मिक लाभ का कारण बन सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं, किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं, किसी प्रकार की मजबूरी में हैं। पिताजी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें, आज के अध्ययन के द्वारा आप उनसे बोले और बातचीत करें, उन्हें आशीषित करें, उन्हें छुटकारा दें और अपनी महिमा लें। आज के अध्ययन पर हम आपकी आशीष मांगते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को दानिय्येल नबी की पुस्तक से आरंभ कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले इसके परिचय अर्थात पृष्ठभूमि को देखेंगे। दानिय्येल की पुस्तक बाइबल की रोमांचक पुस्तकों में से एक है और यह एक भविष्यवाणी की पुस्तक है, क्योंकि बाइबल में भविष्यवाणी का बहुत ही महत्व है। इसलिए मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं, इससे पूर्व कि हम दानिय्येल की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करें। बाइबल की पुस्तकों का चौथाई भाग भविष्यवाणी संबंधित है। इस पुस्तक का विषय और विषय वस्तु अंत समय से संबंधित है। कहने का अर्थ यह है कि वे भविष्यवाणी की बातें हैं। इस पुस्तक के लिखे जाने के समय धर्मशास्त्र का पांचवा भाग पूर्वानुमान था, जिसका एक बड़ा भाग अब तक पूरा हो चुका है। अतः धर्मशास्त्र की भविष्यवाणियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। हम दानिय्येल की भविष्यवाणियों में बहुत सी बातों को देखेंगे जो पूरी हो चुकी हैं। उसमें से कुछ विषय भविष्यवाणी के महान विषय हैं। वे ऐसे हैं जैसे किसी हवाई अड्डे पर चारों ओर से विमान उतर रहे हों, और तब प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में आप देखेंगे कि ये सब विषय अपनी अंतिम पूर्ति पर पहुंच रहे हैं। इस भविष्यवाणी का मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह है। अन्य विषयों में हम देखते हैं इसराइल अन्य जातियां, बुराई, शैतान, पाप का पुरुष, महाक्लेश का समय और इस युग का अंत। कलिसिया भी भविष्यवाणी का विषय है, परंतु पुराने नियम में कलिसिया का उल्लेख नहीं है। अतः दानियल की पुस्तक में कलिसिया का उल्लेख नहीं किया गया है। तदुपरांत प्रभु राज्य सहस्त्र वर्ष और भावी अनंत काल है, ये भविष्यवाणियों के मुख्य विषय हैं। मेरे मित्रों, मैं यह नहीं मानता कि अंत समय और भविष्यवाणी के ज्ञान के बिना कोई धर्मशास्त्र का समग्र ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भविष्यवाणी के अध्ययन को अनदेखा करने के परिणाम स्वरूप बहुत हानिकारक परिणाम उत्पन्न किए गए हैं, जो मेरे विचार में आज अत्यधिक स्पष्ट हैं। भविष्यवाणी के क्षेत्र में अनेक पथभ्रष्ट पंथ उत्पन्न हुए हैं। इसका कारण है कि बड़ी बड़ी कलीसियाओं ने भविष्यवाणी की शिक्षाओं को अनदेखा किया है। पूर्व काल के एक महान बाइबल के ज्ञाता डॉक्टर चार्ल्स होज ने कहा था, यह विषय अर्थात भविष्यवाणी सब भविष्यवाणियों, पुराने नियम और नए नियम के सर्वेक्षण के बिना समझना आसान नहीं है। भविष्यवाणी को विशेष विषय मानकर अध्ययन न करने वाला मनुष्य यदि यह काम करे तो उसकी उपलब्धि संतोषजनक नहीं होगी। लेखक डॉक्टर होज यह जानते हुए कि उसमें ऐसी योग्यता नहीं है, लक्ष्य साधता है कि भविष्यवाणी की व्याख्याओं के ऐतिहासिक सर्वेक्षण पर बहुत अधिक आशा बांधता है। यह निश्चय ही डॉक्टर होज का चौंकाने वाला और दुख पहुंचाने वाला कथन है। इसी के परिणाम स्वरूप आज हम अपनी अनेक कलीसियाओं में देखते हैं कि भविष्यवाणी पर चर्चा करने वाले पूरी तरह तैयार नहीं हैं। वे इसे हाथ हिलाकर महत्वहीन कहते हैं और त्याग देते हैं, और वे जो भविष्यवाणी को अध्ययन करते भी हैं तो वे सनसनी और निर्बुद्धि व्याख्याएं देते हैं। दानियल की पुस्तक विशेष करके ऐसे अनेक जनोत्तेजक लेखकों का विषय है। मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः यह शैतान के वार का विषय है, ठीक वैसे ही जैसे यशाया की पुस्तक रही है और है। यशाया को भविष्यद्वक्ताओं का राजकुमार कहा गया है, तो मैं कहता हूं कि दानियल भविष्यद्वक्ताओं का राजा है। धर्मशास्त्र की ये दोनों भविष्यवाणियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विशेष करके अविश्वासियों के बारे में जो उनके अधीन है। दानियल की पुस्तक रूढ़िवादी और मुक्त विचारक के विद्वानों के मध्य वर्षों से विवाद का विषय रही है, और विवाद का मुख्य विषय रहा है पुस्तक लिखने के समय। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि तीसरी शताब्दी का झूठा शिक्षक पोरफेरी कहता था कि दानियल की पुस्तक एंटिओकस एपिफेनेस के युग में लिखी गई एक झूठी पुस्तक है। मैकबीज भी उसी युग के थे, उनके अनुसार यह पुस्तक 170 ईस्वी पूर्व में लिखी गई थी। दानियल के लगभग 400 वर्ष बाद जर्मनी के विद्वानों ने इस कल्पना का विकास करके पुस्तक की यह आलोचना तैयार की। इन आलोचकों और आज के अविश्वासियों ने यह कल्पना की कि अलौकिक कुछ नहीं है, और भविष्यवाणी अलौकिक है, इसलिए भविष्यवाणी है ही नहीं। मेरे प्रियो, अब रोचक बात तो यह है कि यूनानी पुराना नियम एंटिओकस एपिफेनेस से पूर्व अनुवाद किया गया था, जिसमें दानियल की पुस्तक है। इन मुक्त विचारक विद्वानों ने मृत सागर से प्राप्त कुंडली ग्रंथों की स्पष्ट गवाहियों को अनदेखा किया था। ये कुंडली ग्रंथ यशाया की पुस्तक के एक ही लेखक की पुष्टि करते हैं, जबकि मुक्त विचारक विद्वानों का कहना है कि यशाया की पुस्तकें दो वरन तीन लेखक हैं। मृत सागर कुंडली ग्रंथ इस विषय पर मुक्त विचारकों का विरोध करते हैं। रोचक बात तो यह है कि बाइबल पर उठाए गए प्रश्नों के उत्तर समय आने पर अपने आप ही मिल जाते हैं। झूठे शिक्षक, आलोचक और पंथी सदैव ही बाइबल के उस क्षेत्र में प्रश्न करते हैं जिनके उत्तर उस समय हमारे पास नहीं होते हैं। कल्पना करने का अधिकार सबके पास है और आप भी कल्पना कर सकते हैं, परंतु कल्पनाएं गलत ही होती हैं। समय आने पर परमेश्वर का वचन सत्य सिद्ध होता है। जब सिकंदर महान अपने विजय अभियान में वहां पहुंचा था, तब इसराइल का महायाजक अपने साथ दानियल की पुस्तक लेकर उससे भेंट करने को गया और उसे दानियल की पुस्तक में से उसका नाम लिखा हुआ दिखाया। यह देखकर सिकंदर महान ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने यरूशलेम का नाश नहीं किया, वरन शांतिपूर्वक आकर मंदिर में आराधना की। मेरे प्रियो, ये सब तथ्य आलोचकों का मुंह बंद करते हैं, परंतु वे इन्हें अनदेखा करते हैं। मैं विवाद करने की अपेक्षा दानियल और दानियल की पुस्तक को न तो झूठ न ही छल कहता हूं। पूसी ने कहा था, अन्य कोई भी बात धर्मशास्त्र के विरुद्ध अपमानजनक कल्पना है जो अविश्वास पर आधारित है। आइजक न्यूटन का कहना था, दानियल की पुस्तक का इनकार करना मसीही धर्म का इनकार करना है। प्रभु यीशु ने फरीसियों को पाखंडी कहा, परंतु दानियल को भविष्यद्वक्ता कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, मार्कुस 13 अध्याय उसके 14 पद में प्रभु यीशु की बात वहां पर मिलती है। मैं प्रभु यीशु की बात मानता हूं जो अपनी बात बदलता नहीं था। प्रभु यीशु का सत्यापन प्रत्येक विश्वासी के लिए सत्य और पर्याप्त है, चाहे वह आलोचकों के मत को देखता है या नहीं। और रूढ़िवादी विद्वानों के प्रतिवाद के अध्ययन बिना सत्यनिष्ठ पवित्र जनों को संतोष प्रदान करता है। जी हाँ, हम अन्य किसी भी भविष्यद्वक्ता की तुलना में दानियल के बारे में सबसे अधिक जानते हैं। यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष अर्थात 606 ईसवी पूर्व में बेबीलोन बंदी बनाकर ले जाने से राजा कुसरू के पहले वर्ष 536 ईसवी पूर्व तक वह अपने जीवन का वैतिक विवरण देता है। दानियल का जीवन और सेवा बंधुआई के संपूर्ण 70 वर्षों से जुड़ी है। पुस्तक के आरंभ में वह एक किशोर है, अंत समय में वह लगभग 80 वर्ष से अधिक का वृद्ध पुरुष है। दानियल के विषय में परमेश्वर के विचार हैं। दानियल 10 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, यही कारण है कि मैं आलोचकों का पक्ष लेना नहीं चाहता। एक दिन स्वर्ग में मैं दानियल से भेंट करूंगा और वह अति प्रिय पुरुष ही होगा। उसकी प्रतिष्ठा वास्तव में महान होगी। दानियल के जीवन को उजागर करने वाले 3 शब्द हैं, उद्देश्य, प्रार्थना और भविष्यवाणी। पहली बात हम देखते हैं, दानियल उद्देश्य गर्भित मनुष्य था। दानियल के पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 पद, 6 अध्याय उसके 10 पद में हम इसे देखते हैं। राजा के आदेशानुसार सबको एक ही भोजन खाना था, परंतु दानियल और उसके साथियों ने मूसा की व्यवस्था पालन करने का निर्णय लिया। दानियल के जीवन में एक उद्देश्य था और संपूर्ण पुस्तक में यही प्रकट है। उसमें साहस था कि अपने पांव पर खड़ा होकर परमेश्वर का वचन सुनाए। परमेश्वर दया करे उन मनुष्यों पर जो आज संसार में उसके संदेशवाहक होने का दम भरते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन सुनाने का साहस उनमें नहीं है। मैं आज उन मनुष्यों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूं जो आज परमेश्वर का संपूर्ण वचन सुनाते हैं, जिनमें भविष्यवाणी भी है। भविष्यवाणी हमें सनसनी और पागलपन में नहीं ले जाएगी, अपितु हमें परमेश्वर का भय मानना सिखाएगी और पवित्र बनाएगी। पहला यूहन्ना के पत्री 3 अध्याय उसके 3 पद में यूहन्ना कहता है, जो कोई यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। मेरे मित्रों, भविष्यवाणी का अध्ययन हमारे जीवन को पवित्र करेगा। दूसरी बात हम देखते हैं, दानियल एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। इसे हम दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 पद से लेकर के 23 पद, 6 अध्याय के 10 पद में, 9 अध्याय उसके 3 से 19 पद में और तब 19 पद के 10 पद में देख सकते हैं। इस पुस्तक में दानियल के प्रार्थना के जीवन की अनेक घटनाएं हैं। प्रार्थना ही के कारण वह शेरों की मान में पहुंचा। यह प्रार्थना के उत्तर के बारे में यह कैसा है कि उसने प्रार्थना की और वह शेर के मान में पहुंचा। परमेश्वर ने उसे चमत्कारी रूप से बचाया। वह प्रार्थनाशील मनुष्य था। तीसरी बात हम देखते हैं, दानियल भविष्यद्वक्ता था। दानियल की पुस्तक का विभाजन बराबर का है। प्रथम आधे भाग में इतिहास है और दूसरे आधे भाग में भविष्यवाणी है। दानियल द्वारा प्रस्तुत भविष्यवाणी की रूपरेखा के आधार पर सब भविष्यवाणियां स्थित हैं। दानियल अध्याय 2 में नबूकदनेस्सर की प्रतिभा और दानियल 7 में पशु के भविष्यवाणी की संरचना है। दानियल 9 में 70 सप्ताह और तब पसलियां हैं जो अपने स्थान पर उचित बैठती हैं। ये सब भविष्यवाणी की रीढ़ की हड्डी है। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं। दानियल की पुस्तक का मुख्य पद है अध्याय 2 उसका 44 पद। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। डॉक्टर कैम्बल ने दानियल की पुस्तक को यह शीर्षक दिया, संसार के राज्य में परमेश्वर का सतत राज्य। यह पुस्तक परमेश्वर की सार्वभौमिक प्रभुता की पुस्तक है। इसमें भविष्यवाणी इतिहास में बुनी हुई है कि मूर्ति पूजा, निंदा, अभिमान और अन्य जातियों की असहनशील प्रवृत्ति पर परमेश्वर की प्रभुता है। और तब विशेष करके अध्याय 12 पद 4 अन्य जातियों का समय है। लुका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 24 पद और अंत समय। दानियल की पुस्तक 8 अध्याय उसका 17 पद, 11 अध्याय 35 पद और 40 पद को संयोजित करता है जो इसराइल का महाक्लेश का युग होगा। ये घटनाएं प्रभु के सहस्र वर्षीय राज्य में अंत होती है। दानियल की पुस्तक 12 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछताछ और ढूंढ ढाड़ करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। दानियल की पुस्तक अंत समय की भविष्यवाणियों के साथ राजनीति के विषयों पर भी चर्चा करती है। वह इस संसार में सक्रिय घटनाओं और विषयों के अंतिम परिणाम को भी प्रकट करती है। वह इस प्रश्न का उत्तर देती है, जगत पर कौन राज्य करेगा? इस प्रश्न का उत्तर नहीं देती, संसार कैसे मन फिराएगा? मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक धर्मशास्त्र के अन्य भाग को समझने में सहायक है। जैतून के पर्वत पर चेलों से बात करते समय प्रभु यीशु ने केवल दानियल की पुस्तक से संदर्भ दिया था। दानियल की पुस्तक के बिना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मात्र एक पहली है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 3 पद में पौलुस, जिसे पाप का पुरुष कहता है, उसके स्पष्टीकरण और सविस्तार व्याख्या के लिए दानियल के वृतांत की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके बिना आप उसे नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और हम अध्याय 1 में आते हैं, जिसका विषय है यहूदा का पतन और यरूशलेम का विनाश। दानियल परमेश्वर के प्रति सच्चा रहने का निर्णय लेता है। दानियल और उसके 3 मित्रों की उन्नति देख नबूकदनेस्सर प्रसन्न हुआ है। तो हम देखेंगे यहूदा का पतन और यरूशलेम का ध्वंस होना। दानियल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। यहोयाकीम को यहूदा के सिंहासन पर मिस्र के राजा नीको ने यहोआहाज के उत्तराधिकार में बैठाया था। ये दोनों ही ईश्वर भक्त राजा योशिय्याह के पुत्र थे, जिसने यहूदा में अंतिम धार्मिक सुधार किया था। इसे हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 23 अध्याय उसके 31 से 37 पद में पढ़ते हैं। यहोयाकीम का नाम वास्तव में एलियाकीम था। उसी के राज्य काल में नबूकदनेस्सर पहली बार यरूशलेम के विरुद्ध आया था, जो लगभग 606 ईस्वी पूर्व में और 604 ईस्वी पूर्व में उसने यरूशलेम को जीता। यद्यपि यरूशलेम उस समय नष्ट नहीं किया गया, परंतु बंदियों का प्रथम दल उस समय बेबीलोन को ले जाया गया था। इस बंदी दल में दानियल, उसके 3 साथी और हजारों अनेक लोग ले जाए गए थे। यहोयाकीम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यहोयाकीन सिंहासन पर बैठा। उसने नबूकदनेस्सर से विद्रोह किया और परिणाम स्वरूप नबूकदनेस्सर ने 598 ईस्वी पूर्व में उस पर चढ़ाई की, और इस बार भी उसने यरूशलेम को नष्ट नहीं किया, परंतु राज्य, उसकी माता और परमेश्वर के भवन के सब पात्र तथा इस बार और अधिक जन बेबीलोन को ले जाए गए। इस दल में स्पष्ट है कि यहेजकेल भी था। इसे हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसके 6 से 16 पद में पढ़ते हैं। यहोयाकीन का चाचा सिदकिया राजा बनाया गया और उसने भी विद्रोह किया। इस बार नबूकदनेस्सर ने आकर नगर और मंदिर सबको नष्ट कर दिया। सिदकिया के पुत्र उसकी आंखों के सामने घात किए गए और उसकी आंखें निकाल दी गई। अंतिम बंधुआ दल 588 या 587 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन को ले जाया गया। प्रसंगवश यह यर्मिया की भविष्यवाणी, जिसे हम यर्मिया की पुस्तक 25 अध्याय उसके 8 से 13 पद की पूर्ति के रूप में देखते हैं। यर्मिया और यहेजकेल दोनों ही कहते थे कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बातें गलत हैं, यरूशलेम नष्ट होकर ही रहेगा, केवल ये दो भविष्यद्वक्ता ही सही निकले। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि यहेजकेल की भविष्यवाणी और यर्मिया की भविष्यवाणी, ये दोनों भविष्यवाणी सच साबित हुए, क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें वचन दिया और उन्होंने लोगों तक पहुंचाया, परंतु लोगों ने उनकी नहीं सुनी। झूठे भविष्यवक्ता बार बार यह कहते रहे कि यरूशलेम नष्ट नहीं होगा, परंतु परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इसका स्पष्टीकरण दे दिया था। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता अपने भविष्यवाणी के पूर्ण होने पर साबित होता है कि वह परमेश्वर का जन है। आज कई ऐसे लोग हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, परंतु वे इस बात को भूल जाते हैं कि ये उनके विचार हैं, ना कि परमेश्वर के। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर हम भविष्यवाणी के बारे में सीख रहे हैं और हम जान रहे हैं कि दानियल किस प्रकार से अपने पुस्तक में परमेश्वर की बातों को हमारे लिए रखता है। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही दानियल नबी की पुस्तक के परिचय के द्वारा से लाभ प्राप्त किया है। आने वाले समय में इस पुस्तक के अध्ययन से हम अवश्य ही और अधिक लाभ प्राप्त करेंगे, इसलिए कृपया आप इस अध्ययन पर अवश्य ही बने रहें। अपने मित्रों को भी बुलाएं ताकि वे भी इस वचन के द्वारा से अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। भटके कदम को तेरे वचन ने राह पर लाया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। तेरे बिना था जीवन दुखियारा, पाया तुझे तो पाया जग सारा। तेरे बिना था जीवन दुखियारा, पाया तुझे तो पाया जग सारा। तुझको ही पाने की थी दिल में आज, तुझे जब से चाहा हुआ ये एहसास। फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। तू आया खुशी मिली मेरे मन को तू भाया, खुशी मिली मेरे मन में तू आया, खुशी मिली मेरे मन को तू भाया। ऐसी खिली मेरे जीवन की बात, मैं मानू तेरा ही है मुझ पर एहसान। फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। अंधियारे पथ पर देखी किरण जो तुझको ही पाया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया। भटके कदम को तेरे वचन ने राह पर लाया, फूलों से ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया।